भागवत सार की श्रृंखला में आज तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय पर चर्चा है, जहां भगवान वराह देव का प्राकट्य होगा। तो इसका एक श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरोडितोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य नन्मञ्जसा सूरिभिरोडितोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडतोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्रुतस्य ऐसे व्यक्तियों का जो सुन रहे हों, पुंसां ऐसे पुरुषों का सुचिर दीर्घ काल तक श्रमस्य कठिन श्रम करते हुए ननु निश्चय ही अंजसा विस्तार से सुरी भी ही शुद्ध भक्तों द्वारा ईडितः व्याख्या किया गया अर्थः कथन तत् वह गुण दिव्य गुण अनुश्रवणम् सोचते हुए मुकुंद मुक्तिदाता भगवान का पादारविंदम चरण कमल हृदयेषु हृदय के भीतर येषां जिनके अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, दिव्य छात्र वे है जो प्रमाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। निसंदेह भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदयों के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते क्योंकि वे मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। इसीलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप से सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो, क्योंकि कोई तब तक भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक वे स्वयं शुद्ध भक्त ना हो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएं।
सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदायी अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारत्कण्ठयोस्फुरा।
हरे कृष्ण। तो पिछले अध्याय में जहां विसर्ग कुसार में कहा गया, विसर्ग अर्थात ब्रह्मा जी के स्तर की सृष्टि, और अब इस अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक वराहदेव की लीला का वर्णन होगा। वराहदेव का प्राकट्य, फिर उसकी भूमिका, उसका इतिहास, हिरण्याक्ष का जन्म, हिरण्याक्ष का वध इत्यादि, ये विस्तार से वर्णन होगा। तो आज का अध्याय है जहां वराहदेव का प्राकट्य होगा। इस अध्याय में दो अलग अलग समयों में प्रकट हुए वराहदेव के रूप को एक ही साथ कह दिया गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान प्रकट हुए और जो जो कार्य उन्होंने किए वो उसी समय हुए, लेकिन ये दो अलग अलग मनवंतरों में भगवान प्रकट हुए थे। एक प्रकट हुए थे स्वयंभू मनु के समय और दूसरे प्रकट हुए थे छठे मनु चाक्षुष मनु के समय, और इन दोनों समयों में उन्होंने कार्य एक ही किया था, लेकिन एक समय हिरण्याक्ष का वध नहीं किया था, दूसरे समय उन्होंने किया था। तो इन दोनों लीलाओं को मैत्री मुनि ने बोलते समय जोड़ दिया और इसीलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दोनों एक ही समय में हुई हैं। तो ऐसे वराहदेव के प्राकट्य की लीला है। पहले श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक मैत्री मुनि से प्रश्न किए विदुर ने, तो विदुर ने पूछा कि आप बताइए कि क्या हुआ जब मनु उत्पन्न हो गए। जैसे हमने पिछली बार पिछले अध्याय में सुना कि ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, उनके आगे पांच संतानें भी हुई, तो उस समय पूछा कि ये मनु जब प्रकट हो गए तो उन्होंने क्या कार्य किया, कैसे उन्होंने सृष्टि की, कैसे आगे कार्य किया। और ये भी कारण बताया कि मान लीजिए मैत्री मुनि पूछे कि तुम क्यों सुनना चाहते हो मनु के विषय में, भगवान के विषय में सुनो, तुम ये प्रश्न क्यों कर रहे हो कि मनु ने क्या किया। तो इसीलिए उसका उत्तर देने के लिए वो कहते हैं कि भगवान के भक्तों के विषय में सुनना, मैं इसलिए मनु के विषय में, स्वयंभू मनु के विषय में सुनना चाहता हूं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। और इसीलिए वो इस श्लोक में ये समझाते हैं कि भगवान और भगवान के भक्त, इन दोनों के विषय में सुनना चाहिए। दोनों के विषय में सुनने से व्यक्ति शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में एक समान गुण होते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में सतत लगे हुए हैं शुद्धता से, शुद्ध हृदय से, तो उनका भी हृदय उतना ही शुद्ध है, वे भी उतने ही शक्तिशाली हैं, उनकी लीलाएं उनकी कथाएं भी उतनी शक्तिशाली हैं कि वो भी हमें शुद्ध कर सकती हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति एक शुद्ध भक्त का स्मरण मात्र करता है, केवल स्मरण कर लेता है, तो उस भक्त का जितना भी पुण्य है उसका एक सौवा हिस्सा स्मरण करने वाले व्यक्ति को मिल जाता, केवल उनका स्मरण करने से। तो देखिए, अगर एक शुद्ध भक्त का स्मरण करने से उनके पुण्य मिल सकते हैं, तो फिर अगर हम उनकी कथा सुने, उनकी सेवा करें, उनका संग करें, तो कितना लाभ हो सकता है। तो इसीलिए विदुर प्रश्न कर रहे हैं कि मैं सुनना चाहता हूं मनु के विषय में। और वैसे भी श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों की कई लीलाओं को कहा गया, इसका उद्देश्य यही है, ये समझाने के लिए कि भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? क्योंकि जब हम भगवान के भक्तों की कथा सुनना चाह रहे हैं तो क्यों सुनना चाह रहे हैं? इसलिए कि वो भगवान के भक्त हैं, अर्थात भगवान से जुड़े हैं, इसीलिए हम श्रवण करना चाहते हैं। उनका महत्व क्या है? वो भगवान के भक्त हैं, और कोई महत्व नहीं है। उन्होंने किस शरीर में जन्म लिया, वो किस स्थान पर जन्म लिया, क्या कार्य किए, कितना धन कमाया, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं, भगवान के भक्त हैं, इसीलिए हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये मार्ग है। तो इसलिए भगवान के भक्तों के विषय में विदुर जी भी जिज्ञासा कर रहे हैं कि मैं सुनना चाहता हूं, मुझे बताइए। और उस समय फिर पांचवें श्लोक से आगे करीब पंद्रहवें श्लोक तक ब्रह्मा जी और मनु, स्वयंभू मनु का संवाद है। तो ब्रह्मा जी के पास मनु गए, जब मनु को प्रकट कर लिया मनु का, और मनु ने जाकर प्रार्थना की कि आप बताइए मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले उन चार पुत्रों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया था, और अब ये एक ही लायक पुत्र अब वो आकर कह रहे जो आप कहेंगे वो करूंगा। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ये स्वाभाविक है, प्रभुपाद लिखते हैं कि एक पुत्र को अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। पिछले अध्याय में प्रभुपाद लिख रहे थे कि बहुत अच्छा किया चार कुमारों ने, एकदम सही किया, कोई गलती नहीं है, अपने पिता के आदेश को नहीं माना। लेकिन यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि एक पुत्र को आदेश मानना चाहिए, पिता का आदेश पालन करना चाहिए, गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। और फिर इन दो तीन तात्पर्यों में प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, फिर एक जगह लिख देते हैं कि चार कुमारों ने जो किया वो भी सही था कि उन्होंने अपने पिता का आदेश नहीं माना वो भी सही था, और जो मनु कर रहे हैं वो भी सही है। क्यों? क्योंकि वे लोग विरक्त थे और इसीलिए वो पूर्ण रूप से भगवान में लगे थे, इसलिए वो कर सके। और यहां मनु ये भी दरअसल विरक्त हैं, क्योंकि जो पिता चाहें वही वो करेंगे। तो देखा जाए तो दो प्रकार की विरक्ति का वर्णन है, दोनों विरक्तियां हैं। एक विरक्ति है जहां व्यक्ति आदेश को स्वीकार नहीं कर रहा भगवान की सेवा के लिए, वो भी सही मानी गई है, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। लेकिन ये दूसरी विरक्ति है जहां व्यक्ति स्वीकार कर रहा है दूसरे की इच्छा के लिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं, पिता की या गुरु की इच्छा के लिए। तो ये दोनों प्रकार की विरक्तियां भक्ति में आवश्यक हैं। हमें गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए बिना अपनी इच्छा को बीच में लाए, ये एक विरक्ति है, वैराग्य है। क्यों वैराग्य है? हम करना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन केवल आदेश मिला है इसीलिए हम पालन कर रहे हैं, ये वैराग्य है। जैसे कभी कभी मंदिर में या कहीं संस्था में आदेश दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा, व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लेकिन केवल इसलिए पालन करता है कि अधिकारी ने आदेश दिया, ये वैराग्य है। अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को नाश करते हुए गुरु के आदेश का पालन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, यह सच्चा वैराग्य है। और दूसरी ओर अगर कोई ऐसा आदेश है जो भक्ति में बाधा है, श्री कृष्ण की ओर जाने में, श्री कृष्ण के समर्पण में बाधा है, तो उसको भले हमें आनंद आता हो उसमें, जैसे मान लीजिए चार कुमार अगर विवाह करते, हो सकता है कि अपनी पत्नियों के साथ आनंद ले सकते थे, संतान उत्पत्ति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको त्याग दिया, तो ये भी वैराग्य है। तो दोनों को समझिए, एक वैराग्य है जहां हमें कुछ पसंद नहीं है लेकिन हम गुरु की आज्ञा के लिए करते हैं, दूसरा वैराग्य है जहां हम कुछ चीज आनंद दे सकती है हमें जो चीज, हम उसको त्याग देते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये दोनों वैराग्य आवश्यक हैं भक्ति में, कि एक तरफ हम उन सारी चीजों को त्यागें, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भी चीजें कृष्ण की भक्ति में बाधा हैं, भले हमें प्रिय हैं, भले हमें आनंद देने वाली हैं, वर्जनम प्रतिकूलस्य, प्रतिकूल है अनुकूल नहीं है, त्याग देना, ये वैराग्य है। और दूसरी ओर अनुकूलस्य संकल्पः, जो चीज कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, फिर चाहे हमें आनंद दे या ना दे, हमें कष्ट ही क्यों ना दे, उसको स्वीकार करना, ये भी वैराग्य है। तो इन दोनों प्रकार का वर्णन प्रभुपाद इन तात्पर्यों में करते हैं। तो मनु ने जाकर बड़ी नम्रता से प्रार्थना की कि आप बताइए क्या करना है मुझे। तो उस समय ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम एकदम सही कार्य कर रहे हो, जो एक पुत्र को करना चाहिए। शायद चार कुमार खड़े हुए सुन रहे होंगे तो ब्रह्मा जी सुना रहे थे ऐसा होता है ना कि कभी किसी व्यक्ति को सीधे नहीं बोला जाता। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि जैसे घर में सास होती है, वो बहू को कुछ कहना चाहती है तो अपनी बेटी को कहती है, बहू को सीधे नहीं कहती, तो बेटी से कहती है, बहू समझ जाती है कि हाँ। तो इसी तरह ब्रह्मा जी इनको कह रहे हैं, ये जो तुमने किया सबसे, पुत्र को यही करना चाहिए, यही आदर्श है, यही कर्तव्य है, मानो वो चार कुमारों को सिखा रहे, देखा। तो ऐसे उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम कर रहे हो, सबसे अच्छी चीज है, यही पुत्र को करना चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं इससे। और अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं। तो उन्होंने क्या कार्य करना चाहिए पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने उनको तीन आदेश दिए। ब्रह्मा जी ने कहा सृजन करो, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का पालन करो, और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की आराधना करो। ये तीन आदेश दिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। प्रभुपाद समझाते हैं कि हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि जब ऐसे तीन आदेश उनको मिले हैं कि प्रजनन करना, भगवान की पूजा इत्यादि करना, भगवान के लिए यज्ञ करना और शासन करना, ये तीन आदेश दिए मनु को, और मनु ने यही तीन कार्य किए। तो इसलिए मनु ने मनु संहिता दी है। मनु संहिता अर्थात मनुष्यों के लिए क्या कार्य करना है वो सब लिखा हुआ है उसमें, उसको मनु संहिता कहते हैं। तो मनु ने संतान उत्पत्तियां की। प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर किसी को संतान उत्पत्ति करनी है तो इस उद्देश्य से, भगवान के यज्ञ के लिए, भगवान की सेवा के लिए उसको करना चाहिए। तो मनु ने ये तीन कार्य किए। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि उन्होंने पांच संतानों की उत्पत्ति की, दो पुत्र और तीन पुत्रियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज, और फिर आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो उन्होंने तीनों का विवाह भी किया। आकुति का विवाह हुआ रुचि नाम के ऋषि से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। और ऐसे फिर इन तीनों से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई है, सारे जितने प्रजनन है वो सब इन तीनों से आए। यानी तीनों ये माताएं हैं हम सब के लिए, हम सब वहीं से आए हैं, जो भी जितनी भी योनियां हैं वो सब इन तीनों से आई हैं, क्योंकि ये तीनों शुरुआत में थे। तो इन तीनों से फिर आगे अलग अलग इनकी पुत्रियां हुई, इनके पुत्र हुए, जितने भी हुए सब आगे प्रजनन हुई। इन तीनों ने सारी सृष्टि को भर दिया प्रजनन क्रिया के द्वारा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने इनको ये कहा। तो जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो मनु ने कहा, मनु गए, ऐसा एक स्थान पर वर्णन की मनु ढूंढने गए कहां पर करेंगे, कहीं पृथ्वी नहीं मिली मनु को। तो मनु वापस आकर उनसे प्रार्थना करते कि आपने जो आदेश दिया है कि पृथ्वी को भरो, लेकिन मैं उनके रहने के स्थान कहां है, पृथ्वी तो चली गई गर्भोदक सागर में गिर गई है, तो कहां पे आप कृपया उसको उठाने का कोई प्रयास कीजिए, मेरे से तो संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी उस समय चिंतन करने लगे कि हाँ, मैं सृष्टि करने में व्यस्त हो गया और मैंने देखा नहीं कि पृथ्वी नीचे चली गई है गर्भोदक सागर में, और ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है वहां से उठाना पृथ्वी को। तो अब वो चिंतन करने लगे ब्रह्मा जी कि मैं तो सेवा करना चाहता हूं, ये कैसी बाधा आ गई। लेकिन उन्हें विश्वास था कि भगवान कुछ ना कुछ, भगवान स्वयं इसका उपाय निकालेंगे। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्तों के जीवन में सेवा करते हुए कष्ट आते हैं, बाधाएं आती हैं। जैसे ब्रह्मा जी, वो तो सेवा करना चाहते, भगवान ने सेवा दी, सृष्टि की रचना करो, प्रजनन करो, ब्रह्मा जी ने प्रारंभ कर दिया, अब पृथ्वी गायब हो गई, तो ये कैसी बाधा हो गई भगवान की सेवा में। तो कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि भगवान की सेवा में बाधा कैसे आ सकती है, हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए करना चाहते हैं, फिर भी बाधा आती है। जैसे हम मंदिर बनाना चाहते हैं, भगवान के लिए धन ही नहीं आता है, बाधाएं आ जाती हैं। या फिर आपस में भक्त कुछ सेवा कर रहे हैं तो आपस में सेवा करते करते मनमुटाव हो जाता है, तो दोनों सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं, ये भी, फिर भी बाधाएं आ रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी पारिवारिक बाधाएं आती हैं, समाज की बाधाएं आती हैं, मन की बाधाएं आती हैं, शरीर की बाधाएं आती हैं। तो मन में यह आता है भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान कुछ करते क्यों नहीं, हमारे शरीर को अच्छा रख दें, बहुत सारा धन दे दें, या फिर सारे संबंध अच्छे रखें, मन को अच्छा रखें, समाज को अच्छा रखें, कोई बाधा नहीं हो, हम तो भगवान की सेवा करें। तो प्रभुपाद लिखते कि भगवान की सेवा में भी भक्तों को बाधाएं आती हैं। क्या प्रभुपाद को बाधा नहीं आई? प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जब भगवान की सेवा करना चाहते तो क्या उनको बाधाएं नहीं आई? कितने समय तक उनको प्रार्थना करनी पड़ी एक टिकट के लिए अमेरिका जाने के लिए? ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद ने बस इच्छा की ठीक है भगवान की सेवा के लिए अमेरिका जाना है, टिकट उड़ता हुआ आ गया, कृष्ण ने फेंक दिया, लो जाओ। नहीं, संघर्ष किया प्रभुपाद ने, श्रीमती सुमति मोरार जी के दरवाजे पर बैठ बैठ कर, उनके ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर कि एक टिकट चाहिए, मुझे एक बार मिलने दो, मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे पूरा करना है, अपने लिए नहीं जाना है। जब श्रीमती मोरार जी से मिले तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप बूढ़े हैं और अमेरिका में बहुत ठंड होती है, आप जानते नहीं हैं। जैसे उन्होंने कहा, स्वामी जी यू आर वेरी ओल्ड एंड अमेरिका इज वेरी कोल्ड। एंड प्रभुपाद ने कहा, आई एम वेरी बोल्ड। तो स्वामी जी आप बहुत बूढ़े हैं, आपको ठंड लग जाएगी, हाँ कैसे इतनी ठंड में रहेंगे? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मेरे अंदर मेरे गुरु की आज्ञा का बल है, गुरु ने आज्ञा दी है, मुझे मेरे गुरु के आज्ञा का पालन करना है। तो गुरु की आज्ञा के पालन के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे, समझा रहे थे, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अरे मेरे गुरु ने आदेश दिया है, मुझे उसको पूरा करना है, मुझे अपने शरीर की अपनी चिंता नहीं है। तो कितनी बाधाएं, और वहां पहुंच के भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पहुंच के प्रभुपाद के लिए सब रेडी था, आए तो कोई लेने आए हुए थे, फिर उनके लिए सारे मंदिर रेडी थे, बस आइए इनॉग्रेशन कीजिए चले जाइए, नहीं, कुछ नहीं, कोई लेने भी नहीं आया। जब वो उतरे बॉस्टन में बाहर तो इधर उधर देख रहे हैं, कहां जाना है कुछ पता नहीं, नया शहर, नया राज्य, नया देश, नए लोग, बाधाएं आई। लेकिन प्रभुपाद कैसे सफल हुए वो भी प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे सफल हुए। ब्रह्मा जी को विश्वास था, उनकी श्रद्धा टूटी नहीं, उनका विश्वास टूटा नहीं कि अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा, नहीं, उन्होंने कहा ठीक, भगवान का स्मरण किया ब्रह्मा जी ने कि भगवान ही अब बचा सकते हैं पृथ्वी को। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में बाधाएं जब आए भक्ति में तो बहुत जरूरी है कि श्रद्धा को बनाए रखें, श्रद्धा को तोड़े नहीं। कोई भी बाधा, कभी कभी किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति प्रश्न करता है, इतनी भक्ति की मैंने, इतना सेवा की भगवान की, फिर मेरे घर में मृत्यु क्यों हो गई? अरे मृत्यु तो वैसे भी होनी थी, नहीं भी सेवा करते तो उसलिए हमें प्रश्न नहीं। मतलब क्या है, क्या आपने भगवान की सेवा इसलिए की कि आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हो? या कभी कभी व्यक्ति के पास धन नहीं आता तो वो प्रश्न करता है, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं भगवान की, भगवान थोड़ा धन क्यों नहीं भेज रहे? क्या इसका अर्थ है कि आप भगवान की सेवा धन के लिए कर रहे हो, और अगर भगवान धन नहीं भेजेंगे तो आप विचलित हो जाओगे? नहीं, विश्वास, श्रद्धा, हर समय वो श्रद्धा रहनी चाहिए, सुख में दुख में। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, ये सब आपकी कृपा है। आप शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आप शायद मेरे हृदय में आपकी आपके लिए तीव्रता बढ़ा रहे हैं, इसलिए कष्ट दिए हैं आपने, ये भक्त का भाव है। तो इसलिए ब्रह्मा जी स्मरण करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, और ध्यान करते करते उनकी नसिकाओं से एक छोटा सा अंगूठे के ऊपरी भाग, अंगूठा भी नहीं पूरा, अंगूठे के ऊपरी भाग के आकार का एक शुकर रूप प्रकट हुआ ब्रह्मा जी की नाक से। एक जगह कहा गया ब्रह्मा जी ने छींक मारी और उसमें आ गए बाहर, भागवत में नहीं कहा। तो ब्रह्मा जी की नसिकाओं से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया, मेरी नाक से एक शुकर निकल गया, समझिए आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप छींक मारे या नहीं भी मारे और अचानक नाक से छोटा सा शुकर निकले, उन्होंने ये कहा है। ब्रह्मा जी के भी ऐसे हुआ और अचानक वो आकाश में गया और एकदम विशाल हो गया, इतना विशाल कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, बहुत विशाल हो गया शुकर। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो वो ब्रह्मा जी और वो सब पुत्र जो खड़े थे, सारे बातचीत चल रही थी, तो ये प्रमाण है, देखिए जब कहा गया, हम पहले आपको बता रहे थे कि शायद चार कुमारों को सुनाने के लिए वो कैसा कह रहे थे, वो खड़े थे, तो प्रमाण दिया गया कि वो सब खड़े थे और वो सब चर्चा करने लगे कि कौन है कौन है, ये कैसे ऐसे प्रकट हो गया इतना विशाल, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा जी ने चिंतन मनन किया और ब्रह्मा जी ने कहा हो ना हो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि अन्यथा कोई व्यक्ति साधारण जीव इतना सा निकलकर इतना विशाल नहीं हो सकता कि सारे ब्रह्मांड में फैल जाए। और प्रभुपाद इस बात को लेकर समझाते हैं कि भगवान का कोई भी रूप दिव्य है, भगवान मछली का रूप ले, शूकर का रूप ले, कूर्म का रूप ले, कोई भी रूप ले लें, लेकिन वो दिव्य है और इसको केवल भक्त समझ सकते हैं, भगवान की दिव्यता को भक्त समझ सकते हैं। तो शूकर रूप प्रकट हो गया बहुत विशाल, ब्रह्मा जी भी जान गए और फिर ऊंचे लोकों के सारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थनाएं श्लोकों से उनका गुणगान करना शुरू कर दिया जैसे ही उन्होंने देखा, क्योंकि उस समय कैसे पता चला ऊंचे लोगों को भगवान जब प्रकट हुए, तो जब ये लोग चर्चा कर रहे थे कि लगता है भगवान है, यही भगवान है, तो जोर से भगवान दहाड़े शुकर रूप में, उन्होंने जोर से आवाज की और वो आवाज से सारा ब्रह्मांड हिल गया, ये बताने के लिए कि हाँ मैं ही भगवान ही हूं, चिंता मत करो। और उसको सुनकर ऊंचे लोगों के जितने ऋषि मुनि थे वो पहचान गए कि भगवान है। तो प्रभुपाद लिखते कि भक्त के लिए भगवान को जानना बड़ा सरल है, तो भले वो शुकर रूप में थे, ये रूप अभी तक देखा नहीं था किसी ने, लेकिन वो पहचान गए कि ये भगवान है, उत्तम श्लोकों से उनका गुणगान करने लगे। और फिर भगवान ने फिर से उनके गुणगान को सुनकर जोर से आवाज की और उस समय फिर गर्भोदक सागर में वो प्रवेश कर गए। तो गर्भोदक सागर में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, उसको दो भागों में बांट दिया, इतनी तेजी से वो कूदे थे कि गर्भोदक सागर पूरा दो भागों में बट गया और फिर उसमें से उन्होंने पृथ्वी को उठा लिया। तो ये वर्णन करीब 30वें श्लोक तक ये चलता है, 16वें से लेकर 30वें श्लोक तक, जहां श्वेत वराह भगवान के जो दो अवतार हुए तो एक का वर्ण श्वेत था इसलिए उनको श्वेत वराह कहते हैं, और दूसरे के वर्ण के विषय में कई स्थान पर लिखा है नील था और कहीं पर लिखा है रक्त था, तो वो अलग वर्ण था और श्वेत वराह अलग थे। तो श्वेत वराह का वर्णन ये हुआ कि वो कूद गए और उन्होंने पृथ्वी को उठा लिया अपने दांतों में, दंष्ट्रों में उन्होंने उठा लिया और ऐसे पृथ्वी को उठाकर फिर वो ऊपर लेकर आए। और उस समय जब वो वराहदेव ऐसे कार्य को कर रहे थे, जब पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, तो सारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थनाएं की, तो वहां वर्णन किया गया कि जब पृथ्वी को लेकर ऊपर आए उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, तो यहां से वराह की लीला बदल जाती है, क्योंकि ये जो वराह है श्वेत वराह जो पहले प्रकट हुए, इन्होंने हिरण्याक्ष का वध नहीं किया, हिरण्याक्ष का वध चाक्षुष मनु में हुआ, तो वो आगे चलकर हुआ, क्योंकि अभी तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप प्रकट ही नहीं हुए थे, अभी तो कोई प्रकट नहीं हुए थे, मनु सोच रहे थे प्रकट करने की सबको, तो फिर कैसे आ गए हिरण्याक्ष, तो इसीलिए ये आगे चलकर हुआ था। मैत्री मुनि ने बोलते बोलते दोनों वराह रूप हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। तो ये 31वें श्लोक से 33वें श्लोक तक जो वर्णन है ये श्वेत वराह का वर्णन नहीं है, ये चाक्षुष मनु के समय जो वराहदेव प्रकट हुए उनका वर्णन है। तो फिर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को फिर से अपने स्थान पर रखना था, तो उस समय सारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थनाएं अर्पण की। देखिए भगवान किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो हमारे लिए आराध्य हैं। भगवान की आराधना, भगवान की महानता, भगवान की दिव्यता कम नहीं होती, चाहे कोई भी रूप क्यों ना ले ले। नरहरि रूप, आधा नर और आधा सिंह, तो भी कोई उस दिव्यता कम नहीं होती। कभी कभी कई स्थानों पर कई संस्थाएं हैं जो इस बात को प्रचार करते हैं कि दरअसल जब भगवान छोटे थे तब तक वो भगवान थे, बड़े होकर थोड़ा गड़बड़ करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक काम नहीं किया, इसलिए छोटे, इसलिए वो केवल बाल गोपाल की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल, वो बड़े भगवान की पूजा नहीं करते कि बड़े होकर तो बिगड़ गए थे वो, छोटे थे तो वही भगवान, बस उनकी पूजा करना है। या फिर कई लोग कहते हैं कि दरअसल वो जब छोटे थे तब नहीं, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके वो भगवान बन गए। कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया श्री कृष्ण ने? उसके उत्तर में प्रभुपाद एक स्थान पर समझाते हैं कि पूतना का वध किया, कौन से बड़े हो गए थे भगवान, कौन सा ज्ञान आ गया था, कौन से जिम्नेशियम में जाकर बॉडी बना ली थी उन्होंने, छोटे से थे उन्होंने वध कर दिया। तो इसलिए भगवान किसी भी अवस्था में भगवान है, चाहे वो छोटे से बालक के रूप में हो या फिर अर्जुन के रथ पर हो, कोई भी रूप उनका क्यों ना हो, वो भगवान ही है। तो इसलिए ऐसे, और चाहे फिर वो अलग अलग रूपों को लें, वराह रूप लें, शुकर रूप या फिर मीन मत्स्य रूप लें, कूर्म रूप लें, नरहरि लें, हयग्रीव लें, कोई रूप लें, वो आराध्य हैं। तो इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करना शुरू किया। वैसे ये समझाने के लिए कि भगवान का कोई भी रूप भौतिक नहीं होता, क्योंकि भगवान कभी भौतिक चीजें धारण ही नहीं करते हैं। तो भौतिक रूप, अगर ये माना जाए कि भगवान का भौतिक रूप होता है, तो हम भगवान को भी अपने ही समान मान रहे हैं। तो भगवान चाहे शुक्र रूप में हो, वराह रूप में, रूप दिव्य है, भौतिक नहीं है। कई अध्यात्मवादी हैं जो एक वाद, एक विचार का पालन करते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, निराकार है, लेकिन जब वो रूप लेके इस जगत में आते हैं तो वो भी भौतिक रूप धारण कर लेते हैं, वो भी माया के अधीन आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो भगवान है। प्रभुपाद प्रश्न करते थे कैसे भगवान है जो खुद ही भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और भगवान की शक्ति है माया, तो भगवान माया के अधीन कैसे आ सकते हैं, अपनी ही शक्ति के अधीन कैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान किसी भी रूप में आराध्य हैं, भगवान की पूजा हर रूप में होनी चाहिए, और हर रूप में उनकी दिव्यता को, उनके प्रेम को केवल भक्त समझ सकता है। जब नरसिंह अवतार हुआ तो हिरण्यकश्यपु के लिए तो बड़ा भयानक था, वो काल रूप था, मृत्यु थी, लेकिन प्रहलाद के लिए, 5 साल के बालक के लिए, आनंद देने वाला रूप था वो। तो भक्त के लिए भगवान का कोई भी रूप आनंद देता है। प्रहलाद ने ये नहीं सोचा, यहां ऋषि मुनि ये नहीं सोच रहे कि कौन से रूप में आ गए, गंदा सुअर का रूप, वो भी दिव्य है क्योंकि भगवान का है। मत्स्य रूप दिव्य है, भगवान का है। कूर्म रूप दिव्य है, भगवान का है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे मत्स्य दिव्य हैं, सारे कूर्म दिव्य हैं, सारे शुक्र दिव्य हैं। भगवान जब प्रकट हुए उस रूप में, वो दिव्य रूप है। तो इसीलिए इस चीज को जानने के लिए हमें भक्ति का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो फिर ऋषि मुनियों ने प्रार्थनाओं को अर्पण करना शुरू किया, जो 34वें श्लोक से लेकर 45 श्लोक तक इनकी प्रार्थनाएं हैं। अलग अलग प्रार्थनाएं उन्होंने की। सबसे पहले भगवान को आदर प्रकट किया, नमस्कार करके प्रणाम किया, और फिर उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में कहा कि आपका जो ये रूप है, ये आराध्य है, इसकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग धूर्त हैं, बहुत ज्यादा अपनी आनंद में पड़े रहते हैं, वो आपको देख नहीं पाते, ये रूप आपको वो इस रूप में वो आपको नहीं देख पाएंगे। अर्थात अगर आपको देखना है तो भक्ति हृदय में चाहिए। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो सदैव हृदय में भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में एक अंजन लगा है। अंजन जानते हैं आप लोग? क्या काजल वगैरह लगाते हैं लोग? हाँ, सूरमा। ओके, सूरमा लगा। तो उनकी आंखों में एक अंजन लगा है। क्या अंजन? प्रेमांजन, प्रेम का अंजन। प्रेम का अंजन उन्होंने आंखों में लगाया है और उस प्रेम से जब वो भगवान के रूप को देखते, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, भक्ति भरी आंखों से, प्रेम भरी आंखों से जब भगवान को वो देखते हैं तो ऐसे भक्त संतः सदैव हृदयेषु, सदैव अपने हृदय में भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। तो ऐसे प्रार्थनाएं वो करने लगे और फिर वो कहते हैं कि आपका पूरा रूप ये एक यज्ञ की तरह है। अलग अलग अंगों का वर्णन करते हुए यज्ञ की अलग अलग सामग्री का वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि आप विद्या गुरु हैं। विद्या गुरु मतलब आप वो गुरु हैं जो ज्ञान दे सकते हैं। आपसे सारा ज्ञान आता है, वेद भगवान से आते हैं। एक स्थान पर वर्णन है कि जिस समय वराह देव ने जल में वो कूदे और जल से बाहर निकले और अपने शरीर को झाड़ा, देखते हैं आप कभी कभी शुकर वो गीला हो जाता है तो ऐसे पूरा करता, सारा पानी इधर उधर गिरता है, तो भगवान गीले हो गए थे, नीचे जाके आके उन्होंने जोर से झाड़ा तो उनके जो रोम से वो जो पानी बिखरा उससे फिर वेद प्रकट हो गए। वो पानी की छींटे सब ऋषि मुनियों पर भी पड़ी थी। या फिर जब नरसिंह देव दहाड़ते हैं तो उनके दहाड़ने से वेद प्रकट हो जाते हैं। या फिर जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी बजाने से वेद प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु हैं। तो वो ज्ञान जो हमें हमारे सारे कष्टों से दूर कर सकता है वो भगवान से आता है। और इसीलिए ज्ञान को परंपरा में लेना चाहिए। जब तक ज्ञान परंपरा में नहीं लेते हैं तब तक वो ज्ञान का सही लाभ हमें नहीं मिलता है। ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग शास्त्रों पर चर्चा करते हैं, भगवद गीता पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो परंपरा में नहीं है, भक्त नहीं है, पालन नहीं करते हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी आपके हृदय को कोई प्रभावित नहीं करेगी। सच्ची दृष्टि में ज्ञान अंदर तब जाएगा जब हृदय परिवर्तित होगा, और हृदय परिवर्तित कब होगा? जब ये ज्ञान किसी भक्त से सुना जाएगा, उससे जो उस ज्ञान का पालन कर रहा है, उससे जिसने अपने गुरु से सुना है, उससे जो परंपरा में है, तब ये ज्ञान सही होगा। तो ऐसे प्रार्थनाएं देवताओं ने की कि आप विद्या गुरु हैं। और अभी इस समय जब आप बाहर निकल रहे हैं गर्भोदक सागर से, आपने पृथ्वी को उठाया हुआ है, आपके रूप को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई गजराज, कोई हाथी नदी से निकलते समय कमल के एक फूल को तोड़कर बाहर निकल रहा है। तो देखिए, ये भक्तों का दृष्टि है, ये भक्तों का देखना है। तो भक्त जब भगवान को देखते हैं तो भले शुकर रूप है लेकिन वो किस रूप में देख रहे हैं? बड़ा सुंदर रूप आपका है। तो इस तरह से वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और फिर वो कहते हैं कि आपके जो शरीर से जल आपने जो छिड़का है वो हमारे ऊपर पड़ा। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? पृथ्वी वाले नहीं, पृथ्वी तो डूबी हुई थी, पृथ्वी को तो निकाल रहे हैं भगवान, तो प्रार्थनाएं कहां से हो रही हैं? और अभी तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं तो प्रार्थनाएं कौन कर रहे हैं? जनलोक, तपलोक, महरलोक के निवासी, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत है। ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो नीचे के सारे लोग जल में निमग्न हो जाते हैं, ऊंचे लोक बने रहते हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक ये बने रहते हैं। तो इनके निवासी अब प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने प्रार्थनाएं की और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अब आप पृथ्वी को उसके स्थान पर रख दीजिए ताकि आगे की क्रिया प्रारंभ हो सके। तो भगवान ने फिर पृथ्वी को, तो आगे हम लोग 46वें श्लोक से देखते 50 श्लोक तक, भगवान ने पृथ्वी को रख दिया और फिर भगवान चले गए, अपना कार्य पूरा करके वो वहां से चले गए। और फिर ऋषि मुनि जो प्रार्थना कर रहे थे वे भी बड़े प्रसन्न हुए। दरअसल भगवान आए, लीला की और चले गए, तो हमारे लिए क्या लाभ है इसका? भगवान जब आते हैं, लीला करते हैं, तो जाते समय हम सब के लिए अमृत रूपी लीलाओं को श्रवण के लिए छोड़ जाते हैं। भगवान की लीला करने का यही उद्देश्य है। जब भगवान आते हैं इस जगत में, लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो किस लिए करते हैं? मानुषम देहम आस्तितः भजन्ते भजते तादृशीं क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान इसलिए लीला करते हैं कि जिसको बाद में सुनकर जीव का उद्धार हो सके। तो जाते जाते अपनी लीलाओं को हमारे लिए छोड़ जाते हैं। तो भगवान ऐसे चले गए और पृथ्वी को उन्होंने स्थापित किया। और फिर अंतिम तीन श्लोकों में बहुत सुंदर बात मैत्री मुनि कहते हैं इस अध्याय के अंतिम तीन श्लोकों में, कि जब भगवान जल के भीतर से उठाया था और जल के ऊपर रखकर वे अपने धाम को लौट गए, तो अंतिम तीन श्लोकों में वो फलश्रुति देते हैं। फलश्रुति मतलब इस कथा को जिसने भी सुना उसको क्या लाभ होगा। तो अंत ये कहते हैं, तो बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है, आशा करते हैं आप सबने सुना होगा, अथवा सुनाता है, तो हरेक के हृदय में, हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्याधिक प्रसन्न होते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। और अंतिम श्लोक में मैत्री मुनि कहते, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा? तो कहते कि मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि ना रखता हो। अर्थात अगर हमें जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि नहीं है तो हमें मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। भला कौन है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती हैं? तो भगवान की जो कथाएं हैं सारे कष्टों से हमें उबार सकती हैं, और कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो इन कथाओं का श्रवण नहीं करना चाहेगा। तो ऐसा वर्णन करके फिर इस अध्याय को समाप्त करते हैं, और अगले अध्याय में विदुर और विस्तार में जानना चाहते कि इन्होंने तो बस कह दिया कि आए, हिरण्याक्ष का वध किया, चले गए। तो विदुर ने कहा, एक मिनट रुक जाइए, ये इतने जल्दी नहीं, ये क्या आए और चले गए, विस्तार से सुनाइए कैसे हिरण्याक्ष क्या जन्म हुआ, कैसे उसने युद्ध किया, कैसे मारा, ये पूरा सुनना चाहता हूं। तो फिर अगले अध्याय में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म और फिर भगवान की लीलाओं का आगे वर्णन होगा।